आमुख प्रस्तुत अध्ययन में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उनके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम हुआ है। यों भाषा साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। आधुनिक युग में साहित्य के इतिहास की यह नई महत्वाकांक्षा कही जा सकती है। इस दृष्टि से वृत्त यहाँ सर्वांग पूर्ण न होकर चयन धर्मी है और युग का विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। यदि विवेचन सही परिप्रेक्ष्य में हुआ है तो अलग से फिर मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं रह जाती। संवेदनात्मक विकास को समझने में सुविधा हो इसलिए कवि कीर्तन की बजाय कविता कीर्तन की दृष्टि यहाँ प्रमुख है। इतिहास में बल इतिवृत्त पर होता है, विकास में इतिहास के उस अंश पर जहाँ दिखाया जाता है कि एक युग अपने पिछले युग से और एक रचनाकार कालक्रम में अपने पहले से रचनाकार से कहाँ और क्यों भिन्न तथा विशिष्ट है। भाषा साहित्य और संस्कृति के अंतर संपर्क में हिंदी क्षेत्र और वहाँ के जन समुदाय की संवेदना कैसे विकसित होती गई है और साहित्य उसे किस रूप में प्रतिफलित करता है, यह इस समूचे अध्ययन की अंतर्वस्तु है। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न यहाँ हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन का विवेचन आरंभ करते हुए जनता और शिक्षित जनता के बीच जो सूक्ष्म अंतर किया था उसकी स्पष्टतर पहचान अब आधुनिक साहित्य के विस्तृत होते फलक में देखी जा सकती है। आलोचना और इतिहास विवेक समकालीन साहित्य के अध्ययन और उसकी परख से निश्रित होकर तथा युगीन संदर्भों से जुड़कर ही प्रामाणिक तथा गतिशील बनता है। प्रस्तुत लेखक द्वारा आधुनिक साहित्य के आरंभिक इतिवृत्त और अध्ययन हिंदी नवलेखन 1960 तथा हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 तब लिखे गए थे जब नई कविता और नवलेखन की रचना प्रक्रिया पूरे वेग पर थी। रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले केंद्र में रखते हों पर उनका आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। परवर्ती आलोचक और इतिहासकार इसके लिए यदि नए साहित्य की ओर उन्मुख हों तो यह स्वाभाविक और ऐतिहासिक क्रम विकास के अनुकूल है। उपर्युक्त दोनों अध्ययन जिन स्वजनों को समर्पित हुए थे पूरे ऐतिहासिक विकास का रेखांकन करते समय इस अवसर पर उनका स्मरण सहज और उचित है। तब वर्तमान अध्ययन उन्हें फिर से नए रूप में समर्पित हो यह उसी प्रक्रिया का अंग है। आलोचना विवेक के स्रोत और प्रमाण रूप में आधुनिक कालीन साहित्य के विवेचन पर बल का औचित्य भी यहाँ देखा जा सकता है। इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 शीर्षक पिछली पुस्तक के लिए जो कुछ तैयारी हुई थी वह अब पूर्णतर और रचनात्मक रूप में प्रतिफलित हो रही है। यह लेखक के लिए आंतरिक तोष का विषय है, विशेषकर ऐसे समय पृष्ठ संख्या 10 में जब साहित्य के इतिहास लेखन को दुसाध्य समझकर छोड़ दिया गया है और उसके स्थान पर साहित्य इतिहास दर्शन में बेअनुपात रुचि बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना उचित होगा कि चंद बरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व तो है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करें। इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक के इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यहाँ प्रयत्न यह है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन की बात कही थी। आज की भाषा में चित्त वृत्तियों के संश्लेष को संवेदना कहा जाएगा। संवेदना में बदलाव को समझने से साहित्यिक युगों की परिकल्पना और उनके बीच के महत्वपूर्ण अंतरालों को समझा जा सकता है, जो साधारण दृष्टि के लिए ओझल बने रहते हैं। इसलिए साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। इतिहास का अध्ययन संपन्न होने पर अतीत और परंपरा की ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक है। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता से दूर यमुना कछार में बसे गांव कच्छपुरा आगरा में अपने घरेलू पुस्तकालय की याद सबसे ऊपर है। आजीविका को लेकर परिवार का संबंध कलकत्ता से रहा 19वीं शताब्दी के अंत से। इस क्रम में बंगाल के पुनर्जागरण की कुछ झलक इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची थी। घरेलू पुस्तकालय बहुत कुछ इसी सिलसिले से बना, जिसकी शुरुआत पितामह पुरुषोत्तम दास चतुर्वेदी ने की। न केवल पुस्तकों के संग्रह बल्कि अनेक समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी पूरी रुचि थी। यद्यपि अपने व्यवसाय से उनकी इस रुचि का कोई संबंध नहीं था। सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी, चांद आदि कोई ऐसी पत्रिका न थी जिसे वे न मंगाते हों। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में वे मिडिल उत्तीर्ण थे और अपने ग्रामीण अंचल के पहले विधिवत शिक्षित व्यक्ति थे। विशाल भारत संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी के पिताश्री उनके मित्रों में थे और इस नाते पत्रिका के आरंभ से उसके क्रमिक विकास में उनकी रुचि होना स्वाभाविक था। पितामह के संग्रह को अगली पीढ़ी ने संवर्धित किया अपने अपने प्रिय लेखकों की कृतियों से, जिनमें बड़ा भाग स्पष्ट ही उपन्यासों का था। बंकिम चटर्जी और कुछ समकालीन कथाकारों की रचनाएं इस पुस्तकालय में थीं। जॉर्ज रेनॉल्ड के रहस्य रोमांच प्रधान उपन्यास थे और देवकी नंदन खत्री तथा उस प्रकार के अन्य लेखकों की तिलस्मी रचनाएं थीं। बंगला और अंग्रेजी उपन्यास अनुदित रूप में थे। कुछ नाटक, जीवनियां तथा सामयिक विषयों पर लिखी पुस्तकें थीं। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती भी थी। पितृव्य मेघराज, भगवान दास, लक्ष्मण प्रसाद, राधा मोहन, दामोदर दास तथा पिता त्रिलोकीनाथ ने अपनी अपनी रुचि से इन पुस्तकों का संकलन किया था। गांव के रिश्ते के चाचा देवी प्रसाद तथा मदन लाल भी इस पुस्तकालय से जुड़े थे। इनमें मदन लाल चतुर्वेदी ब्रजभाषा के कवि थे और कलकत्ता में दैनिक लोकमान्य पत्र के संपादक। अपने छोटे भाई ब्रह्मानंद तथा बहन सत्यवती के सहयोग से माँ शांता की देखरेख में इस घरेलू पुस्तकालय की देखभाल हम लोगों का एक प्रियतर कार्यक्रम था, मुख्यतः अपने मनोरंजन के लिए। वह सारा बिताया गया समय इस रूप में आगे उपयोगी होगा, इसका तब गुमान भी न था। अब वह पिछली पीढ़ी तो स्मृति शेष है, जिसे आज प्रणाम निवेदित करके ही संतुष्ट हुआ जा सकता है। पृष्ठ 11। साहित्यिक रुचि बनने के आरंभिक दिनों में सर्वश्री परमेश्वरी दास, शिवदत्त, जगदीश चंद्र, विठल शर्मा चतुर्वेदी जैसे स्वजनों तथा पंडित राज बहादुर अवस्थी, प्रोफेसर C.N. चौहान, रेवरेंड R.G. स्लेटर, मॉन्सियो I.A. ट्रॉस और प्रोफेसर द्वय, धीरेन्द्र वर्मा, सतीश चंद्र देव जैसे गुरुजनों का योगदान अविस्मरणीय है। पुस्तक का अधिकांश रामचंद्र शुक्ल शताब्दी वर्ष 1984 में लिखा गया है। गत वर्ष तक आचार्य शुक्ल के संबंध में कई प्रकार के आयोजन हुए, जिनमें से कुछ में भागीदारी करनी हुई। इन गोष्ठियों की चर्चा परिचर्चा से रामचंद्र शुक्ल और उनकी इतिहास तथा आलोचना प्रक्रिया को लेकर अपनी समझ बढ़ाने का अवसर हुआ। उसका लाभ भी किसी न किसी रूप में इस अध्ययन तक पहुंचा है। इतिहास लेखन के कई जोखिम हैं, समकालीन साहित्य को लेकर एक है। कितना समकालीन इतिहास में स्वीकार्य हो, यह बराबर विवाद का विषय रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में लिखा है, पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। इस जी न मानने के पीछे शुद्ध भावात्मक कारण नहीं वरन समकालीन साहित्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की उत्कट इच्छा है, जिसने इतिहासकार की साहित्यिक रुचि और उसके आलोचनात्मक विवेक के बनने में योग दिया है। और वास्तविक कृतज्ञता ज्ञापन महज कहने से नहीं होता, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी किसी एक लेखक द्वारा प्रस्तुत इतिहास क्रमशः इतिहास के सामान्य प्रवाह में स्वीकृत हो सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, 15 जनवरी 1986।